भक्तों को ज्ञान है, क्योंकि बलराम जी कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। इस बात को भगवान स्वयं बतला रहे हैं, क्योंकि भगवान का आने का समय हो गया है। जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो आने से पूर्व सारी व्यवस्था तैयार कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के कहीं भाषण होता है तो वहां सारी सुविधा सारी व्यवस्था पहले कर दी जाती है, सारी तैयारियां पहले से कर दी जाती हैं। तदनंतर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति तत्त्व स्थानीय श्रेष्ठ मंत्री जन आते हैं और अपना काम सिद्ध करते हैं। तदवत उसी तरह अनंत ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान जब देख लिए कि पृथ्वी पर दुष्ट राजागण बढ़ गए हैं, जिनके प्रभाव से पृथ्वी बोझिल हो गई है, अर्थात पृथ्वी पर अधर्म इतने बढ़ गए हैं कि धर्म नाम का कोई चिन्ह नहीं रह गया है, और जितने ये राजागण हैं ये प्रजा के लिए भार स्वरूप हो गए हैं, पृथ्वी के लिए भार स्वरूप हो गए हैं, यहां तक कहा जाए कि पाप रूप हो गए हैं। देखने में तो ये सब राजा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन पाप रूप हो गए हैं। इन सारे चीजों को वो देख ही रहे थे तब तक इन सारे दुष्टों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो पीड़ा पहुंची, दुख पहुंचा, इन दुखों से त्रसित होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के शरण में गई और ब्रह्मा जी ने उनके दुखों को सुना और भगवान के पास पहुंचे समस्त देवताओं के साथ। और जब समस्त देवताओं के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़ा सुंदर स्तुति की और उस स्तुति के पश्चात भगवान ने कहा कि हे ब्रह्म आदि देवगण, जो पृथ्वी का बुखार है, ज्वर है, इसको मैं पहले से ही जानता हूं। ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे तब मैं जानता हूं। जैसे संसार के डॉक्टर हैं वैसा मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वैसा चिकित्सक नहीं हूं, क्योंकि संसार में किसी को बुखार हो जाता है, रोग हो जाता है तो वैद्य या डॉक्टर आला लगाते हैं या वैद्य नब्ज पकड़ते हैं तब बतलाते हैं कि यह रोग है, यह रोग है, यह रोग है। या जो अंग्रेजी के हिसाब से जो दवाई करते हैं वो आला लगाते हैं या वो बहुत सारे चेकअप करते हैं, उसके माध्यम से जान पाते हैं, कहीं उसको भी जानने में असमर्थ रहते हैं। किंतु भगवान कह रहे कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं पूर्वतः पूर्वम एव पहले से ही मैं सब कुछ जानता हूं। पुरैव विदितम धारा ज्वरः, मैं पृथ्वी के भार को, दुख को, ज्वर को, पीड़ा को पहले से ही जानता हूं। ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे तब मैं जानूंगा, मैं जानता हूं, लेकिन इतने के बाद में भी मैं उस काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस काल में मुझे आना चाहिए। अब बहुत समय नहीं है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए और पृथ्वी को सांत्वना दीजिए और अपने अपने स्थान में चले जाइए, अब हम शीघ्र ही आने वाले हैं। और आप समस्त देवगण ब्रज में चले जाइए जहां पर गाय गोप आदि से समलंकृत है, वहां जाकर आप गोप के रूप में प्रकट होइए और हम अपने शक्ति के साथ, राधा रानी के साथ आएंगे। ऐसा उन्होंने कहा। इन समाधि के भाषा में जो भगवान कहे, इन सारे बातों को ब्रह्मा जी सुने। कैसे सुने? इस आजकल के फोन से भी उनका ज्यादा बढ़िया सिस्टम है। आजकल के फोन का सिस्टम है कि हो सकता है कि एक फोन से कई लोग सुन सकते हैं, लेकिन भगवान का सिस्टम ऐसा है कि वो जिसको सुनाना चाहेंगे वही सुनेगा। इस संसार में जो फोन का व्यवस्था चली हुई है तो हम चाहें कि किसी गुप्त से बात करें तो भी संभव नहीं है, अगर सरकार चाहे तो सुन सकती है। लेकिन भगवान ऐसे एक सरकार हैं, ऐसी व्यवस्था रखे हैं कि उनके मंत्रणा को, उनके विचार को, उनके धारा को
केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसको वो बतलाना चाहते हैं। जानत जे ही जानत सोई जे ही दे ही जनाई, वही जान सकता है। तो ब्रह्मा जी को समाधि के भाषा में कहे, समस्त देवताओं के साथ वहां पृथ्वी जी भी हैं, शिव ब्रह्मा इंद्र आदि कुबेर वरुण आदि सब हैं, लेकिन केवल ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। जब ब्रह्मा जी इस बात को सुने तो उनको तसल्ली हुई समस्त देवताओं को, उन्होंने यही बात बतलाई, भगवान को प्रणाम करके विदा कर दिए। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को बतलाए कि चिंता करने की बात नहीं है, अब शीघ्र ही प्रभु आने वाले हैं और यह कंस कुछ ही दिनों का मेहमान है, अब चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद में उन्होंने ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, पृथ्वी को समझा दिए, वो भी अपने रूप में धरा पर स्थित हो गई। इधर भगवान ने अपने संकल्प मात्र से आदेश दिया, संकल्प मात्र से उन्होंने याद किया, किसको? अपने शक्ति को। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम जदूनाम निज नाथानम जोग मायाम समाधिशत। अपने जोग माया शक्ति को उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि कंस के उत्पात को वो पहले से ही जानते थे, विदित्वा वो जानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं। क्यों जानते थे? भगवान सब कुछ में पूर्ण है, सदैश्वर्य परिपूर्ण है। तो जदु नाम निज नाथा नाम जोग मायम समाधिशत, जो जदुवंशियों के एकमात्र नाथ हैं, अथवा जिन जदुवंशियों ने जिनको अपना नाथ मान चुका है, ऐसे भयभीत लोग हैं, हमारे लोग भयभीत हैं, ऐसा समझकर भगवान ने जोग माया को आदेश दिया। और जैसे ही मन में संकल्प किए, वो हाथ जोड़कर वह उनके सामने खड़ी हो गई। जोग माया जब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तब उन्होंने कहा, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान कहे, गच्छ देवी ब्रजम भद्र, हे देवी तुम ब्रज में जाओ, गोप गोभीर अलंकृतम, गायों से गोपों से बछड़ों से जो अलंकृत है उस गोकुल में तुम जाओ। वहां किस लिए? तो कह रहे हैं भगवान की रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, नंद गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रह रही हैं। प्रश्न उठा कि क्यों रह रही हैं? तो कह रहे हैं कि कंस सम विघ्ना बिबरेशु बसंती ही, कंस के उद्वेग से त्रास से वे इतनी डरी हुई हैं कि पता नहीं वह पापी कब और कहां क्या करेगा। इस भय से बचने के लिए, इस भय से त्रसित होकर, कंस के व्यवहार से त्रसित होकर, वे सब जहां तहां अपने कुल कुटुंब रिश्तेदारों में भाई बंधु मित्रों के पास जहां तहां छिप गई हैं। और इसमें भी वसुदेव जी का ही अभिप्राय है, क्योंकि शास्त्रों में वसुदेव जी की कई पत्नियों का वर्णन है, उसमें एक रोहिणी जी भी हैं। और आपके लिए आज्ञा है कि वहां वो रहती हैं, वहां आप जाओ। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्ट रोहिणा उदरे सन्निवेशय, हे देवी देखो मथुरा कारागार में, यद्यपि इस श्लोक में वर्णन नहीं है, मथुरा कारागार में, हम अपने से जोड़ रहे हैं, मथुरा कारागार में देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और इस समय उसके गर्भ में हमारा तेज, हमारा प्रकाश, हमारा द्वितीय स्वरूप आ चुका है, उसको वहां से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में रखना, और जो देवकी जी का गर्भ है, जो मंदिर है हमारे लिए, उस मंदिर को खाली करो, क्योंकि उस सिंहासन पर मैं बैठना चाहता हूँ, वहां मैं आना चाहता हूँ, इस काम को करना है। तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, आप रोहिणी जी के गर्भ में स्थापना करो, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। और यहां तक कहा कि तुम यह फोकट में काम नहीं करोगी, ऐसा नहीं कि संसार में कुछ लोग होते हैं काम करा लेते हैं और मंजूरी भी नहीं देते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं, काम कराकर देते ही हैं, किंतु तुमको मैं निश्चित दूंगा। भगवान तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं कि संसार में व्यक्ति काम कराते हैं तो मंजूरी देते हैं, लेकिन मैं तो अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक हूँ, तो मैं जब काम करा रहा हूँ तो क्यों नहीं दूंगा, अवश्य दूंगा, यह भाव है। तो भगवान इस भाव से कह रहे हैं, अथाह मुंस भागे न देवक्या पुत्र ताम शुभे प्राप्स्यामि त्वम जसोदायाम नंद पत्नम भविष्यसि। देखो इस काम को करो और मैं अपने अंश भाग से देवकी के पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा और तुम्हारे लिए मैं काम देता हूँ कि तुम जसोदा के गर्भ से प्रकट होना, हमारे लीला में हमारे कार्य में सहायता करनी है, ठीक है। उन्होंने कही ओके ठीक है। और चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वम, ऐसा काम करोगी तो तुमको मैं अब इनाम दे रहा हूँ क्या। और चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करोगी तो तुम्हारे लिए संसार में इतना भारी उपलब्धि होगी कि उसके समान कोई नहीं होगा, तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। सर्व काम बरेश्वरी, तुम समस्त कामनाओं के पूर्ण करने में समर्थ हो जाओगी। लेकिन मुक्ति को छोड़कर संसारिक सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकती हो, यह हमारा आशीर्वाद है। जिस देवी को गांव भर में, गांव गांव में, घरों घरों में पूजा होती है, उस देवी के लिए भगवान ने ऐसा आदेश दिया। और धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान, इस बात को लोग जानेंगे और जानने के कारण इस संसार के आरती लोग, कामी लोग, धर्म अर्थ काम जिनको चाहिए, मोक्ष से मतलब नहीं है, वे सब के सब तुम्हारे पास आएंगे और तुम सर्व काम वर प्रदान होकर विराजमान होगी, सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। तुम्हारे नाम होंगे 14, नाम भेयान कुरुवंती स्थानानी च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। ये 14 तुम्हारे नाम होंगे, इन 14 नामों से तुमको लोग जगत में जानेंगे और इनमें से किसी नाम की पूजा करेंगे तो तुम सभी मनोरथों को पूर्ण करोगी, ऐसा भगवान ने उनको आदेश दिया। जब आदेश दिया तब इतने पर चुप नहीं रह गए, यहाँ सब कुछ बताते हुए विधिवत भगवान काम कर दिए। क्यों? तो भगवान पहले ही नामकरण कर दिए, आएंगे पीछे और नामकरण कर रहे हैं पहले। नियम तो यह है कि छोटा आदमी बड़े आदमी का नामकरण न करे, लेकिन भगवान पर यह नियम लागू नहीं होता है। भगवान आगे आवे या चाहे पीछे आवे, वो भगवान भगवान ही रहते हैं। वो 6 दिन के अवस्था में हो, 3 महीने के अवस्था में हो, 100 दिन के अवस्था में हो, या अनादि अनंत ही क्यों न हो, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौनम ही क्यों न हो, वो नित्य भगवान है। उनमें देश काल आदि का अवच्छेद नहीं है, इनसे वो परिच्छिन्न नहीं है, वे सब कुछ वही है। इसलिए काल देश का नियम उन पर लागू नहीं होगा। भगवान ने उनका नाम दिया और नाम देने में क्या कारण है, तो कह रहे हैं कि गर्भ संकर्षणात्तम वही प्राहु संकर्षणम भूवि, गर्भ से खींचे जाने के कारण, एक गर्भ से खींचकर निकाले जाने के कारण उनका नाम लोक में, जगत में संकर्षण कहलाएगा। दूसरा अर्थ है कि जो सबको मिलाने वाले हैं, जो सबको संधि कराने वाले हैं, उनको संकर्षण कहते हैं। दो टूटे हुए व्यक्तियों को जो जोड़ दें, दो ग्रुप टूटे हुए ग्रुप को जो जोड़ दें, उनको संकर्षण कहते हैं। सारे सौहार्द स्नेह प्रेम को प्रदान करने वाले होने के कारण उनको राम कहते हैं। अथवा जिनमें सभी लोग रमण करते हैं, अबाल वृद्ध सभी लोग, बूढ़ा हो तो, जवान हो तो, बालक हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, सभी लोग जिनमें रमण करते हैं, अथवा इन सभी लोगों में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। रमनते जोगिनः जस्मिन् इति रामः, जिसमें सभी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। रमयति इति रामः, जो सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है, प्रमोदित करता है, हर्षित करता है, उसको राम कहते हैं। अथवा जो सब में रमण करता है, आत्मभूत होकर रमण करता है, उसको राम पद से कहते हैं। तो संकर्षण हुआ एक, राम हुआ दो, और बलवानों में इतना बलवान है कि उनके समान कोई बलवान नहीं है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बलभद्र कहलाएंगे। तीन नामों से भगवान ने उनकी दीक्षा दे दी। अरे भाई, दीक्षा में क्या दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है, पहले नाम जो है उस नाम को हटाकर दीक्षा वाला आध्यात्मिक नाम दे दिया जाता है, बस हो गई दीक्षा। तो भगवान ने पहले ही सबको दीक्षा दे दी और वरदान भी दे दिया, देवी जी को भी, बलराम जी को भी। यही शक्ति यहाँ आज पधार रहे हैं और इनकी बहुत भारी कृष्ण लीला में सहयोग है। भगवान बलराम को अनंत कहा गया है, शेष कहा गया है, संकर्षण कहा गया है, महासंकर्षण कहा गया है। एक ही व्यक्ति को कहा गया है, एक ही तत्व को कहा गया है, एक ही वस्तु को कहा गया है, ये दो नहीं है। जैसे मूलभूत कारण है कृष्ण, कृष्ण के दूसरा स्वरूप बलराम, बलराम का स्वरूप ही नारायण, नारायण का ही स्वरूप महाविष्णु, महाविष्णु को ही नाम कहते हैं कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और गर्भोदक साई विष्णु। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, यह क्रम है। इस नाम से भी उनको जानते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। उन्हीं तत्व को द्वारा अलग अलग काम करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि बलराम जी भी कई रूपों से भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए ही यहाँ आते हैं। उनके मन में हमेशा सेवा करने की भावना होती है। इस पर श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि एबे केह कौन पापी शास्त्र देखिले न नाही माने, आएक अर्थे अन्य अर्थ कोरिया बखाने। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई। मूर्ति भेद आपने हये न प्रभु दास, आसे सब लक्षण अवतारे एई प्रकाश। कह रहे हैं कि ये कृष्ण के ही स्वरूप हैं, किसी दूसरे के स्वरूप नहीं हैं, और वे चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई। कृष्ण लीला में जो है वही महाप्रभु के लीला में है, जिनको बलाई कहते हैं। बलाई माने बलराम, वो बलराम हैं। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत हैल सेई बलराम हैल निताई, वही बलाई हैं। और तान स्थान, उनके स्थान में, बलराम जी के चरण में यदि कोई अपराध करता है तो इस संसार में कहीं चला जाए, उसको शांति नाम के चिन्ह नहीं है। यह सावधान स्वरूप बतलाने में कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। वही भगवान कई रूपों से, बलराम जी ही भगवान के सेवा करने के लिए इस जगत में आते हैं, प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। कैसे? वो 10 रूपों से आते हैं और 10 रूपों से सेवा करते हैं इस जगत में। ऐसे तो अनंत हैं, तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं, अनंत लीला भी कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ 10 रूपों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं सखा, भाई, व्यजन, शयन, आवाहन, गृह, छत्र, वस्त्र, जत भूषण, आसन। आपने सकल रूपे सेवे न आपने, आ जारे अनुग्रह करे न पाय से जने। बलराम जी 10 रूपों में होकर अपने प्रभु की सेवा करते हैं। बलराम जी एक ऐसे तत्व हैं कि भगवत तत्व हैं, और भगवत तत्व होते हुए भी ये भक्त स्वरूप भी हैं, भक्त रूप भी हैं। भक्त के रूप में अपने को सदैव मानते हैं और सेवा करते हैं। वो चाहे किसी भी अवतार में आ जाए, रामा अवतार में आ जाए या कृष्णा अवतार में आ जाए, वो हमेशा सतत सेवा ही करते हैं। तो इन 10 रूपों में हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ कह रहे हैं कि सखा भाव से भी सेवा करते हैं, बलराम जी सखा रूप में भी सेवा करते हैं। सखा के रूप से भाई बलराम भाई भी हैं और सखा भी, कृष्ण के साथ कृष्णा अवतार में सख्य भाव है, मित्र भाव है, लेकिन भाई भी हैं, क्योंकि एक गर्भ से दोनों प्रकट हुए हैं, भाई हैं, सहोदर हैं, इसलिए वो भाई भी हैं। व्यजन पंखे के रूप में भी हवा करते हैं, सेवा करते हैं। स्वयं आसन के रूप में भी होते हैं, जो शेष भगवान नाग हैं उन पर शयन करते हैं, स्वयं आसन भी वही हैं, उसके रूप में शयन करते हैं। और आवाहन वे स्वयं वाहन के रूप में वही हैं, गरुड़ जो ढोते हैं वाहन के रूप में भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है, गरुड़ पक्षी के रूप में वाहन के रूप में भी है। इसके अतिरिक्त भी और जहाँ कहीं वर्णन है वो भी बलराम जी का ही स्वरूप है। गृह मंदिर के रूप में भी वही है, जहाँ कहीं भी मंदिर बनता है वो बलराम जी का ही स्वरूप है, उसमें भगवान पधारते हैं। ऐसा क्यों सेवा के भाव से? छत्र छत्र के रूप में, जो छत्र लगाया जाता है भगवान के ऊपर वो छत्र के रूप में वही है। वस्त्र वस्त्र के रूप में भी सेवा करते हैं। जितने आभूषण हैं कृष्ण के शरीरों में, यहाँ उल्लेखित जो अब हैं वो भी, और जो नहीं यहाँ हैं उन सभी आभूषणों में, जिन जिन वस्त्रों को, जिन जिन आभूषणों को, जिन जिन आयुधों को जो स्वीकार करते हैं प्रभु लीला में, उन सारे वस्तुओं के रूप में, लीला सहयोगी के रूप में बलराम जी ही हैं। ये सेवा का मतलब है। इसके बाद कहते हैं आसन जिस पर भगवान विराजते हैं, जिस पर प्राण प्रतिष्ठा आदि करके लोक में भी पधराते हैं, वह बलराम जी ही हैं, आसन भी वही है। आपने सकल रूपे समस्त रूपों में वही हैं, अनेक कृष्ण ही दूसरे रूप में बलराम के रूप में, आसन भी वही है, मित्र भी वही है, भाई भी वही है, शयन के लिए बेड भी वही है, रहने के लिए मंदिर भी वही है, छात्र भी वही है, सब वही है, कोई दूसरा नहीं, सब बलराम जी, और बलराम जी कोई दूसरा नहीं, कृष्ण ही। क्यों? एक स्वरूप से एक स्वरूप की सेवा कर रहे हैं। जारे अनुग्रह करे न पाए सी जने, उन्हीं के अनुग्रह से सारे सेवाएं जीवों को देखने को सुनने को मिलती हैं। ये भगवान बलराम की अद्भुत क्षमता और महिमा है, भक्ति है। अब प्रश्न उठा कि बलराम जी पहले क्यों आ गए? तो इनको रामावतार में बड़ा खेद हुआ था मन में कि मैं छोटा बन गया था, उस समय प्रभु श्री राम को मैं रोक नहीं सका क्योंकि मैं छोटा था। छोटा होने के कारण आदेश बड़े को नहीं दिया जा सकता है। तो इनके मन में खेद हुआ जब प्रभु श्री राम अपने कोमल कोमल श्री चरणों से जंगल में चल रहे थे, पांव में जूती नहीं है और कंकीले पत्थर भूमि पर चल रहे हैं, कर्कस भूमि पर चल रहे हैं जहां कांट हैं, कूश हैं, दास हैं, नुकीले पत्थर हैं, और भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि जिन चरण कमल को श्री जी भी अपने हाथ से छूती हैं तो भगवान के लिए असह्य हो जाता है। इस चरण कमल से जब भगवान जंगल में चल रहे थे तो बड़ा कष्ट हुआ श्री लक्ष्मण लाल जी को, लक्ष्मण जी को। तो मन में संकल्प किए कि ना, आज मैं बड़ा होता तो ऐसे अपने प्रभु को दुख में मत पड़ा हुआ नहीं देखता, और स्वामी के दुख में पड़े हुए देखना यह सेवक का काम नहीं, लेकिन मैं करूं क्या, मजबूर हूं, इनके सामने हमारा चलने वाला नहीं है। हे भगवान, यदि अगले बार लीला करें आप तो मुझे पहले आना चाहिए। ये मन में बात चल रही है, आपस में बात चल रही है। जैसे ड्रामा करते हैं ना, तो ड्रामा में कभी कभी पाठ बोल कर करना होता है, पीछे से जो सिखाया गया उसको बोलना होता है, और कभी स्वागत बोलना होता है। स्वागत माने अपने आप बोलना होता है, जो मन में आया बोलिए, तो उसको स्वागत कर, ये स्वागत विचार करके बोल रहे हैं कि मैं इस बार तो छोटा हो गया लेकिन अगले बार आऊंगा तो छोटा नहीं बनूंगा, क्योंकि बड़ा बनकर मुझे आना है। जब बड़ा बनकर रहूंगा तो अपनी इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार दोनों विधि से मैं सेवा कर सकूंगा। यह चतुराई है, भक्तों की सेवा करने की यह चतुराई है। बलराम जी ऐसा सोचे, तब तक से आगे सीता हरण हो जाने पर, फिर रावण के वध हो जाने पर, सीता प्राप्ति हो जाने पर अग्नि परीक्षण। जब अग्नि परीक्षण वाला दृश्य देखे तो उनके मन में और दुख हो गया। अरी अरी, सर्वतो भाव से, सभी प्रकार से जो निर्दुष्टा हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, उन जनक नंदिनी श्री जी में दोष, अग्नि परीक्षा, इसके पात्र वो नहीं हो सकती हैं। कैसे माना करूं, न चाहते हुए भी वो आग की व्यवस्था किए, लकड़ी की व्यवस्था किए, आग लगाए और उसमें सीता जी को पार करना पड़ा, न चाहते हुए, इससे भी उनको कष्ट हुआ था। अच्छा, सह लिए, मन में फिर संकल्प करें कि यदि मैं आज बड़ा होता तो बलपूर्वक रोक देता। तब भगवान कहे मन से, ठीक है, अगले बार बल बनोगे। जैसे जैसे मन में भावना कर रहे हैं, वैसे वैसे भगवान मन से तथास्तु तथास्तु। किसी से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, आप कृपा कीजिए, तो दयालु जन कहते हैं हो जाएगा चिंता मत करो। लेकिन कंजूस लोग ऐसे कहते हैं, कंजूस लोग ऐसे कहते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त कंजूस नहीं होते हैं, कहते हो जाएगा। भगवान मन से कह रहे हैं हो जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, तुम बड़े ही बनोगे। तो दो बार दुख हुआ, तीसरे बार जब धोबी के कहने से श्री जनक नंदिनी को त्याग दिया। एक बार क्या हुआ कि अपने राजकाल में भगवान श्री राम पता लगाने लगे कि देख ले जनता हमारे प्रति क्या कहती है, अथवा दुखी तो लोग नहीं है, सुखी तो है ना। तो घूम के और धरात्री में पता लगाने लगे तो एक धोबी अपने पत्नी धोबिनी से कह रहा था, डांट रहा था, तू जा भग जा यहां से, यहां मुंह दिखाने मत आ, ठीक मत मेरे सामने खड़ी मत हो, मैं उस राम के तरह लंपट नहीं हूं जो सीता दूसरे के पास रह कर आई थी, फिर भी उसको रख लिया, समझी, चल हट हट। तो ये बात भगवान सुन लिए, अच्छा हमारे साथ प्रति ऐसा सोच रहे हो। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता है। जब सुने इधर आए और श्री जी को उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, इसको ले जाकर जंगल में छोड़ा। भगवान की विचित्र लीला है, समझना बड़ा कठिन काम है। तभी तो कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः, धर्म जन्मादेश में मुह्यन्ति यत् सूरयः। यत् सूरयः माने जिस भगवत स्वरूप में या जिस वेद स्वरूप के तत्व को जानने में बड़े बड़े कवि लोग, विद्वान लोग, भक्त लोग, ऋषि लोग, ब्रह्मर्षि लोग मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। इसी बात को भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, तुम शोक मत करो, तुमने जो 18 क्षौणी सैनिकों का वध किए हो, करवाए हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सर्वम काल कृतम मन्ने भवता यद् विनिश्चितम्, भगवान ने जो चाहा वो आप किए हो, और उन्हीं की इच्छा से मैं भी युद्ध किया हूं। हम भी नहीं चाह रहे थे, तुम भी नहीं चाह रहे थे, द्रोणाचार्य भी नहीं चाह रहे थे, फिर भी युद्ध हुआ क्योंकि वो चाह रहे थे। तो तुम इसमें शोक मत करो, जब वो चाह रहे तो बोले। और यह सोचते हो कि हमारे मामा के लड़के हैं, हमारे हाँ मामा के लड़के हैं, तो सो बात केवल भूल जाओ। यह सोचते हो कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दूत हैं, जिन्होंने सार्थक तक के काम किया, ये परम तत्व हैं। इनका कोई भी नहीं जान पाता है कि कब और कहां कौन सी लीला करना चाहते हैं। न यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदित्सितम्, कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता है। और कोई अपने बल बुद्धि पौरुष पराक्रम से जानना चाहता है तो मोहयंती कवयोपि, मोहित हो जाते हैं। इसलिए इनकी कृपा मानकर, हां में हां मिलाकर तुम निर्द्वंद हो जाओ। वही बात यहां कह रहे हैं कि इनके तत्व को नहीं जान पाते हैं, भगवान कब क्या करना चाहते हैं। सीता जी को कह दे कि आप त्याग दो, ले जाकर जंगल में छोड़ाओ। कोई समझ सकेगा इस बात को, भगवान क्यों त्यागना चाहते हैं। सर्व स्वतंत्र सिर पर न कोई, परम स्वतंत्र ईश्वर है, सब लोग उनके दास हैं, कठपुतली हैं, ईश्वर एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत हैं, वो जो चाहेंगे सब करना पड़ेगा। तो इस बात को जब देखे लखनलाल जी, भगवान अनंत देखे, शेष देखे, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। कहे कि बाप रे बाप, जिनको जीवन भर मैं मां के नेत्र से देखा, जिनके केवल चरण को मैं देखा हूँ, ललाट को भी नहीं देख पाया हूँ, उनको आज मैं दर्शन से वंचित होकर जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ, केवल छोटा होने के नाते। यदि मैं आज बड़ा होता तो दो दो हाथ हो भी जाता तो कोई बात नहीं, दो दो हाथ हो भी जाता इनके साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोटा हूँ, उसमें भी सेवक हूँ। एक तो सेवक उम्र में भी छोटा, दो दो अयोग्यता होने के कारण वो केवल क्षोभ प्राप्त करके चुप हो गए। लेकिन सर्वज्ञ, सर्व अंतर्जामी, सर्व साक्षी, सर्वनियंता, प्रत्यगात्मा भगवान तो सबको जानते हैं राम, इसलिए कहा तथास्तु, तीन बार तथास्तु किया। वही कारण है कि भगवान जो बलराम जो अनंत हैं, वो मन में कामना किए कि हे प्रभु कृष्णा अवतार में हम पहले जाएंगे और आपके इच्छा के अनुसार और अपने इच्छा के अनुसार सेवा करूंगा, इसलिए वो पहले है। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि भगवान जो चाहते हैं वो होता है। तो भगवान और भगवान के भक्त के इच्छा में कोई भेद नहीं होता। तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, नारद जी कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता है। तस्मिन भगवती और तज्जने भक्तेषु न भेदः, नहीं भेद है। भगवान के भक्त जो चाहते हैं वो भगवान करते हैं, और भक्त जो चाहते हैं वो भगवान करते हैं, अथवा भगवान जो चाहते हैं वो भक्त करते हैं, इसलिए दोनों दोनों के पूरक हैं, भिन्न है ही नहीं। इसलिए इस आधार पर, भक्ति नार सूत्र के आधार पर भगवान ने कहे तथास्तु, वैसे ही होगा। अब जब आ गए तो अनेकों प्रकार से उनकी सेवा करना चालू किए। भगवान बहुत सारे लीला किए हैं, और इस लीला में बलराम जी की बहुत भारी सहयोग है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही प्रश्न किया गया है कि कृतवान किल वीरियाणी सह रामेण केशव, जो भगवान केशव के साथ जो लीला किए हैं, और अतिमर्त्यानी अथवा अतिमर्त्य भगवान श्री केशव के साथ बलराम जी ने जो लीला की है, अथवा बलराम जी के साथ अपने भाई बलराम के साथ अपने द्वितीय स्वरूप के साथ सर्वशक्ति सर्व स्वतंत्र ईश्वर जो लीला की है मनुष्य के रूप में छिप कर, उनका आप वर्णन कीजिए, अथवा वो किन किन लीलाओं को किए हैं आप इसका भी वर्णन कीजिए। एक प्रश्न है, छह प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है, तो इस प्रश्न को यहां जोड़ रहे हैं कि वो कौन कौन सी लीला किए। कृतवान किल वीरयाणी, कौन कौन से वीरयाणी, कौन से लीलाएं किए हैं, किसके साथ, रामेण सह, राम के साथ, बलराम के साथ, संकर्षण के साथ, बलदेव के साथ, बलभद्र के साथ, ऐसा प्रश्न किया गया है। आप कृपा करके हे सुत गोस्वामी हम से बतलाइए, यही भाव है। तो यहां पर कौन कौन से लीला किए हैं, तो भगवान जब जन्म लिए तो छह दिन के थे, पुतना मौसी का काम तमाम कर दिए। जब तीन महीने के थे सप्तासुर का उद्धार कर दिए। जब नब्बे दिन के हुए उनका नामकरण हुआ। एक वर्ष के अवस्था में त्रिणावर्त का उद्धार कर दिए। जब तीन वर्ष तीन माह के थे तो जमलार्जुन का उद्धार कर दिए। इतने सारे लीलाओं के करने के बाद जब तीन महीने के भगवान थे, तो वृंदावन को छोड़कर गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए, और वृंदावन छोड़कर छठिकरा में कुछ दिन रहकर फिर नंदगांव चले गए। तीन बरिस चार महीने के थे तो नंद गोकुल में पहुंच गए, और जब चौथे वर्ष में भगवान पहुंच गए तीन महीने कुछ दिन के थे तो वत्स चारण करने लगे। तो भगवान आजकल के बालकों जैसे नहीं है कि आजकल के तीन साल के या चार साल के या पांच साल के छह साल के बालक कुछ भी नहीं करते हैं, केवल खेलते हैं। भगवान वैसे नहीं थे, उनका सब कुछ अद्भुत है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका सब कुछ दिव्य है। उनका आकार प्रकार क्रिया हाव भाव मुद्रा सब अद्भुत है। वो तीन साल के अवस्था में भी तेरह साल के लगते थे, वैसा काम करते थे। तो सभी गोपों ने विचार किया कि इनको वत्स चारण में लगा दिया जाए। उसके बाद में जब भगवान चौथे साल में पहुंच गए, वत्स चारण का काम छोड़ दिए, पांचवें में जैसे ही प्रवेश किए गोचारण में लगा दिया गया। तो जब वत्स चारण कर रहे थे तो उस समय बड़ी एक विचित्र घटना हुई। जब वत्स चारण कर रहे थे तो उस समय ऐसे लीला भगवान की है कि बलराम जी को भी पता नहीं चला, लेकिन देखते सब रहे। एक दिन सारे गौओं को उन्होंने देखा कि सारे गौएं भगवान से जैसे प्रेम करती थी, सारे गोपियां भगवान से जैसे प्रेम करती थी, सारे बछड़ों से जो गैया प्रेम करती थी वो सब कृष्ण से प्रेम करती थी, वो सब के सब मैं देख रहा हूं कि अपने अपने बछड़ों के साथ कर रही है, अपने अपने पुत्रों के साथ कर रही है। और कारण क्या है कि जो गैया दूध नहीं दे रही है, जो दूध देना छोड़ दी है, पिलाना छोड़ दी है, वो भी गैया अपने अपने बछड़ों के साथ प्रेम कर रही है, कारण क्या है? इस लीला को गिरिराज के तलहटी में बैठकर ऐसे हाथ पकड़ के सिर पर रख के सोच रहे थे। तब कन्हैया गए और कहे, दाऊ दादा क्या बात है, गंभीर चिंतन क्या बात है, गंभीर चिंतन में क्या बात है? कहे कि अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया। फिर क्या नहीं समझ में? देखिए ऐसा जब कन्हैया कहे तो सब रूप में कन्हैया ही थे, क्योंकि वनभोज लीला करते समय उनको मोह हो गया था। अघासुर के वध के बाद मोह हो गया था। जिस दिन अघासुर का वध किए थे उस दिन भगवान बलराम जी को नहीं ले गए थे। तो आचार्यगण कहते हैं कि क्यों नहीं ले गए थे? इसलिए नहीं ले गए थे कि अघासुर का वध करना है, वो है सांप के जाति का, और दाऊ दादा भी हैं शेष ही, तो इनके जाति के लोगों का जब मैं नाश करूंगा तो हो सकता है कि भाई भाई में ही लड़ाई हो जाए तो लीला अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भाई जाति पाति की तो प्रथा है ही, सब अंतर जातीय ब्याह हो रहा है, फिर भी बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जाति के वो मत पूछिए, बड़ा कुल गोत्र जात देखा जाता है। तो जात के चलते कहीं भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो लीला अधूरी रह जाएगी और वो खामा खाम के आपस में कलेश बढ़ेगा, इसलिए दाऊ दादा को छोड़ देते हैं, बाद में ले जाएंगे। तो ब्रह्म मोहन के बाद जब उसका अघासुर समस्त गोप कुमारों के निकल गया था, अब उसका पेट जब फट गया भगवान के घुसने से, तो ब्रह्मा जी को आवाज हुई और ब्रह्मा जी आए देखे तो पता चला कि एक विशाल जीव मरा है। फिर ऑफिस चले गए और ऑफिस गए काम करने के लिए, फिर इधर वन में भोजन करने लगे। सारे गोप कुमार जब भोजन कर रहे थे छीके में से निकाल निकाल कर उस पत्थर पर चरण पहाड़ी में, जो आज भी वो शिला है, आप लोग जाकर देखेंगे वहां छप्पन कटोरा भी है, बहुत सुंदर है। तो उस पत्थर पर बैठ कर जब भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी तब तक आ गए और जब आए तो देखे कि उसके मुख में वो दे रहा है, उसके मुख में वो दे रहा है, अथवा सब ब्रजवासी अपने अपने मुख से निकाल के ये बीच में जो बैठा हुआ है सांवला सलोना इसके मुख में डाल रहे हैं, जिसको मैं भगवान समझ रहा हूं। क्या ये भगवान हो सकता है? नहीं नहीं। तब उस समय परीक्षा के दृष्टि से समस्त गोप कुमारों बछड़ों को चुरा लिए और बछड़े जब नहीं दिखाई पड़े तो गोप कुमारों ने कहा कि आप हमारे बछड़ों के लाइए क्योंकि हमारे धन तो समाप्त हो गए। तब कन्हैया कहे कि तुम लोग खाओ, हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो हाथ में तलहटी पर भात दही लिए हुए हैं और पांचों अंगुरियों के गांसे में, किसी में नींबू का अचार, किसी में अदरक का अचार, किसी में टेंटी के अचार, किसी में मिर्ची के अचार लेकर, और बगल में काखी में दाबे हुए छीके और वो अहिर भेष में, गोप भेष में वो खाते हुए जा रहे हैं, बछड़ों को ढूंढ रहे हैं किधर हैं। आंख घुमाते गए, कुछ दूर तक तो बछड़े मिले, पांच मिले, लेकिन बछड़े नहीं मिले। तृण लोभे न गहवरम बिबिसुहु, वो तृण के लोभ में बहुत भीतर चले गए थे। वहां से जब लौटे तो देख रहे हैं कि गोप कुमार भी नहीं है। तब कहे वो क्या हो गए? समझ गए भगवान, अच्छा बेटा ब्रह्मा तुमको मोह हो गया, हमारे मंजू महित्वम को देखकर, लीला को देखकर मोह हो गया। कोई बात नहीं, सर्वम स्वरूपम बभव, सभी स्वरूपों में कृष्ण ही हो गए। दस अध्याय दसवां स्कंद के तेरहवां अध्याय में वर्णन है, जो बोल रहा हूं ये वर्णन है। जावत जस्य विषाण वेणु दलसिंह, जावत वत्स काल्पक बपुः, जितने बछड़े थे, जितने आकार के थे, जितने स्वभाव के थे, जितने गोप कुमार थे, जितने आकार के थे, जितने आयु के थे, जितने स्वभाव के थे, सब बन गए। जिसका जैसा वेत्र था वो भी बन गए, जो जैसे पगड़ी बांधता था वो भी स्वरूप वाले बन गए। और ऐसा जानते हैं, अब ब्रह्म ही ब्रह्म को चरा रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को हांक रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को देख रहा है, वो लाठी से घेर रहा है। यह लीला एक साल तक चली, लेकिन बलराम जी को पता नहीं चली, क्योंकि पहले मैं वर्णन कर दिया हूं कि भगवान ऐसे महिमा वाले हैं कि उनके लीला को सब लोग नहीं जान पाते हैं। जान तभी पाते हैं जब वो जनाना चाहते हैं। तो बलराम जी नहीं जान पा रहे थे, तो ऐसे सोच रहे थे भगवान के, क्या बात है दाऊ दादा, इन सारे लीलाओं को एक ही सेकेंड में देखा दे, क्या बात है देखिए। तो देखते हैं कि सारे बछड़ों के रूप में कन्हैया, सारे बछड़ों के रूप में कन्हैया, सारे गोप कुमारों के रूप में कन्हैया, सारे छीके बंसी बेंत वस्त्र सब कन्हैया। तब कहे कि तुम इतने दिनों से छिपाए थे, हमको क्यों नहीं बताए। ये स्वरूपों में लीला चलती है। कहे कि अब समय आ गया है आपको बतलाने का, इससे पहले बतलाने वाला नहीं था दाऊ दादा, अब आप आपकी लीला आ गई। इसके बाद में बड़ा सुंदर लीला चालू हुई। अब एक दिन की बात है कि गोप कुमार गोचारण कर रहे थे, वत्स चारण की तो बात छोड़ दीजिए, गोचारण कर रहे थे। और गोचारण करते करते उन लोगों के मन में आया, कहने लगे कि दाऊ दादा ओ कन्हैया देखो यहां से कुछ ही दूरी पर तालबन नाम का वन है, और उसमें बड़ा सुंदर ताल वृक्ष है, और बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, और उस फल में इतने सुंदर गंध हैं कि उनके गंध से हमारे नेत्र रुक नहीं रहे, वहां बार बार चले जा रहे हैं, आप कृपा करके वहां हम लोगों को ले चलिए और फल खिलाइए। ऐसा जब गोप कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहे कि क्या दिक्कत है, आप चलो जाकर खा लो। तो सब गोप कुमारों ने कहा कि ना 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 बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां एक धेनुक नाम का असुर रहता है जो गधे के रूप में रहता है, और मनुष्य मात्र के गंध पाते ही मार डालता है, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं और खा भी नहीं सकते हैं। ये तो आप जैसा अद्भुत कर्मा ही कोई व्यक्ति जाकर वहां कुछ करेगा तब हम लोगों को फल मिलेगा। तो अपने मित्रों को बात को जब भगवान ने सुना तो उनके मन में दया आ गई। जब दया आई, श्रीदामा आदि के बातों को सुनकर वो स्वयं वहां चल दिए, और जब वहां पहुंचे, श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयोह सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेदम ब्रुवन। जब प्रेम पूर्वक इन गोपों के द्वारा कहा गया राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण इतो विदुरते सम्मूह वनम तालाली संकुलम, हे बलराम हे अति पराक्रमी बलदाऊ दादा, यहाँ से कुछ ही दूरों पर बहुत सुंदर वन है, फलों से वह भरा हुआ वन है, ताल वृक्षों से घिरा हुआ वह वन है, बड़ी सुगंधित फल है, खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम लोगों के द्वारा वह अप्राप्य है। अच्छा अप्राप्य है, हाँ। तब चलो चलो दाऊ दादा बड़ी दयालु है, चलो उठाए अपना हल और मुसल, पहुंच गए और वहां जाकर एक पेड़ को पकड़े जोर से, और उस पेड़ को पकड़ के हिला दिए, और उस पेड़ को जब पकड़ के हिलाए तो बहुत सारे फल भी गिरे, और पेड़ के हिलने से वह असुर भी जान गया। जब असुर जान गया कि हमारे क्षेत्र में तो कोई आ गया है, इसलिए वहां से रेखता हुआ चिल्लाता हुआ, और कृष्ण बलराम गोपों को देखा और उसका क्रोध भड़क गया। जब भड़क गया तो क्या किया कि पहले दूर गया, और दूर से खूब मौसम बनाकर और घूमते हुए रेखते हुए आया, और खींच के दुलत्ती बलराम जी के छाती में मारा, क्योंकि गधे आते हैं दूर से और मारते समय ऐसे करते हैं, उलट के मारते हैं। तो जैसे ही वो मारा तो कम खिलाड़ थोड़े हैं दाऊ दादा, ये भी जब वो मारा तो ऐसे हो गए, तो लात नहीं लगी, और वो रेखता हुआ देखा कि लात तो नहीं लगी, बड़ा रिस हुआ उसको, फिर दूर गया, और इस बार जब वो आया तो घुमा के लात मारा, तो जैसे ही मारा तो भगवान ने क्या किया कि एक हाथ से ही उसके पांव को पकड़ लिए। भगवान है, बलराम है, अनंत है, महासंकर्षण है, उनके लिए ये मूली गाजर की तरह है, जैसे छोटे छोटे बच्चे मूली और गाजर के उठा के आराम से ऐसे खिलाते हुए छोड़ दे, राम नाम सत हो जाएगा उसका। ऐसे ही उनके पैर को पकड़े बलराम जी खेल खेल में और बड़े आराम से घुमा दिए, ऐसे जोर से घुमाए और एक तमेचा भी नहीं लगा, एक घुसा भी नहीं लगाए, क्योंकि ज्यादा खेला दिया तुमको, तू धन्य भागी है, छोड़ दिए उनको। जैसे ही छोड़े तो पेड़ों पर छोड़े, पेड़ों पर गिरे तो एक पेड़ दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, पूरा आधा वन वैसे ही लड़के साफ हो गया और वो बेचारा धनकासुर का काम वही तमाम हो गया। बोल दाऊ दादा की जय। तो दाऊ दादा धनकासुर का उद्धार कर दिया। इस समय भगवान हंस रहे हैं तो आचार्य लोग कह रहे हैं कि आखिर दाऊ दादा हंस क्यों रहे हैं, कारण क्या है हंसने का है? तो कह रहे हैं कि हंस इसलिए रहे हैं भगवान कि बाप रे बाप, मैंने त्रिणावर्त का उद्धार किया, सकटासुर का उद्धार किया, जमलार्जुन उद्धार किया, बत्सासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया और यहाँ तक कि बहुत सारे दुष्टों का उद्धार किया, उसमें कभी इतना उत्साह नहीं दिखाए, लेकिन आज गधा मारने में इतना उत्साह, इसलिए हंस रहे हैं भगवान, चुपचाप हंस रहे हैं, यही कारण है। प्रश्न उठेगा कि सभी असुरों को तो भगवान मारे, धनकासुर को क्यों नहीं मारे? तो इस पर आचार्य लोग विचार देते हैं कि भगवान ने प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के वध के समय वचन दिया था कि हे प्रहलाद, अब तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न है, तुम्हारे संबंध से जो उत्पन्न हुए हैं, उन लोगों के मैं अपने हाथ से वध नहीं करूंगा, और यह धनकासुर उन्हीं के वंश के था, इसलिए अपने हाथ से न मारकर दाऊ दादा के हाथ के द्वारा मरवाए। ये दो कारण थे। तो इस प्रकार से धनकासुर के वध में दाऊ दादा लगे और इसके बाद में प्रलंबासुर का वध किए। एक दिन की बात है कि दाऊ दादा कन्हैया के साथ कबड्डी खेल रहे थे और कबड्डी खेलते खेलते जब थक गए तो छुआछूत ध्वंता के खेल खेल रहे थे, क्योंकि गांवों में बहुत सारे खेल होते हैं, गोबरुआ के खेल, गदिल के खेल और छुआछुई के खेल, वो चीका धूही के खेल, वो कुश्ती के खेल बहुत सारे होते हैं। तो वो उसमें जो पत्ती काटी जाती है, उस पत्ती में जो चोर हो जाता है, जो पार्टी हार जाती है, तो वो धोती है और एक उस पर चढ़ता है। तो एक पक्ष में बलराम जी थे और दूसरे पक्ष में कन्हैया। तो जिस पक्ष में कृष्ण थे उसी पक्ष में एक असुर भी आ गया, क्योंकि जब ये खेल खेल रहे थे तो वो सोचा कि यही सुंदर अवसर है, इसी के पक्ष में चला जाए। और वह कंस के द्वारा भेजा हुआ प्रलंबा नाम का असुर था, वह गोप कुमार में आया, इन्हीं लोगों में मिलकर कृष्ण के तरफ से गोपों बलराम के पक्ष के गोपों को ढोने लगा। तो एक बार पझाड़ी आ गई बलराम जी को ढोने का, अर्थात बलराम जी को चढ़ाएगा और ढोएगा कौन? प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर बलराम जी को अपने पीठ पर चढ़ाकर अब ढोने को समय प्राप्त कर लिया। उस समय में जो एक सीमा होती थी कि यहां तक ले जाकर छोड़ देना है, तो वह पीठ पर जैसे ही चढ़ाया और पीठ पर चढ़ा के वह तेजी से निकला और तेजी से निकलकर सीमा से बाहर चला गया। तो बलराम जी को शंका हो गई, अब तक नहीं बलराम जी समझ रहे थे लेकिन कृष्ण समझ रहे थे। वो जब सीमा से बाहर निकला तो बलराम जी को शंका होगी कि आखिर ये बाहर क्यों जा रहा है, लगता है असुर है गुप्त के भेष में। तुरंत समझ गए, वो समझ कर अपना वजन भी बढ़ा दिए और खींच कर एक मुका मारे वहीं राम नाम सत्य हो गया। बोल दाऊ दादा की जय। तो लीला में दो सहायता तक किए, दो असुरों का वध किए उन्होंने। उतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर, जब कंस ने बुलाया गोप कुमारों के तो वहां सल तोसर मुष्टिक चारुण आदि हैं, वहां भी कृष्ण और बलराम युद्ध किए हैं और उस युद्ध में तीन लोगों को श्री श्याम सुंदर मारे हैं और दो लोगों को दाऊ दादा मारे हैं, तो वहां भी सहायता किए। ऐसे इलवल को भी उन्होंने मारा और द्विविद को भी मारा, इस तरह से कई दुष्टों को मार मार के कृष्ण लीला में उन्होंने सहायता की। और एक बार की इनकी लीला में और बहुत सारी सहायता है। एक बार की बात है कि जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता लेकर आए, भगवान ने पढ़ा और पढ़कर जब जाने की रुक्मिणी जी चाहती हैं, तो वो स्वयं अकेले ही रथ को सजाए और कुंडिनपुर पहुंच गए। जब दाऊद दादा आए कहीं गए थे खेती करने वाले, गृहस्थ आदमी क्या करेगा, खेती ही तो करेगा, हल मुसर लिए हैं, उनको खेत भी जोतना पड़ता था, पानी भी लगाना पड़ता था, वो आल कुदाल भी करना पड़ता था, गायों को भी चराना पड़ता था, सारे काम जानते थे। इसलिए दाऊद दादा आए घर पर, तो जब घर पर आए उधर से लौट कर तो देखे कन्हैया नहीं, पता लगाए पता नहीं चला, वो चुपे चले गए थे। तब तो अपने शक्ति से जोग बल से जान गए, ओहो वो तो कुंडिन पर पहुंच गया रुक्मिणी से विवाह करने के लिए, और हमारा भाई अकेले गया है, वो तो छोटा सा है कैसे करेंगे। वो तुरंत एक अक्षौणी नारायणी सेना लिए और पहुंच गए बिना बुलाए बिना कहे, और वहां जाके समस्त दुष्टों को बलों को दमन किए और कृष्ण के सहयोग करके रुक्मिणी जी को लेकर आ गए। इस तरह से वो लीला में जगह जगह पर सहायता किए। जब रुक्मिणी के भाई जब रुक्मी था उसका भी उन्होंने मार के पृथ्वी का भार हल्का किया, तो रुक्मी को मारा तुष्टि सल आदि तोसल चारों सल तोसल आदि मुष्टि पहलवानों के वध में सहायता किया, दो लोगों को मारकर द्विविद बलवल आदि के मार के सहायता किया, साथ ही गोचारण में जो सहायता किया ये अद्भुत है। तो ऐसे भगवान श्री अनंत के अनंत महिमा है, और यहाँ वर्णन किया गया है पंचम स्कंध के पच्चीसवें अध्याय में वर्णन किया गया है कि उन्हीं भगवान शेष के द्वारा सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, उनको हम नमस्कार करते हैं। षष्ठम स्कंद पंचम स्कंद के 25वें अध्याय के 5 श्लोकों में कहे गए हैं, 9, 10, 11, 12 और 13 इन 5 श्लोकों में भगवान संकर्षण के लीलाओं का वर्णन किया गया है कि ये संकर्षण कौन से तत्व हैं, ये कैसे हैं। तो इनके बहुत सारे सुंदर स्वरूपों का वर्णन किए हैं, तो इन स्वरूपों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इससे भगवान संकर्षण के कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि एक स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो इनके कृपा के बिना हम कृष्ण के कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के यदि कृपा प्राप्त करनी है तो हमें दाऊ दादा की आराधना करनी चाहिए, उनकी स्वीकृति जरूरी है, उनकी स्वीकृति के बिना कृष्ण भक्ति में प्रवेश नहीं होता है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। इसलिए आज परम पवित्र शुभ मुहूर्त में, शुभ बेला में, शुभ तिथि में, शुभ काल में हम यत किंचित अपने शक्ति और सामर्थ्य के कारण भगवान दाऊ दादा के कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी याचना करेंगे कि हम भी उसी पथ के पथिक हैं। तो हे दाऊ दादा आप कृपा कीजिए, हम तो क्षुद्र जीव हैं, कुछ भी नहीं आपके बारे में बोल सकते हैं, किंतु जब आप कृपा करेंगे तो आपके बारे में भी जान सकते हैं, आपके आराध्य भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में भी जान सकते हैं, और उनकी भक्ति मिल सकती है। इसलिए हम इतना ही प्रार्थना करके आप वैष्णव के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रभुपाद जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताई प्राण बल्लभ श्री राधा रास बिहारी समस्त वैष्णव गणों के चरणों में कहते हुए इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। पढ़ा कुछ और था, बोला कुछ और। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि इसी के संदर्भ में होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं हो जाना चाहिए कि कोई प्रश्न कर दे कि भाई वो गणेश जी के सिर कटा तो कहाँ गया था। हमारे महाराज जी बनवान गांव में कथा कर रहे थे, कथा के बाद कहे कोई प्रश्न, तो एक पूछा उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति कहा कि महाराज जी गणेश जी के जो सिरवा कटाई रहे तो का भाई। तो महाराज जी उसी के भाषा में कहे हमारा पता नहीं खे जाके अधौरा थाना में थानेदार से पूछिए, वही बही मेंटेन करता है। तो संदर्भगत प्रश्न होना चाहिए हर एक।
बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। श्री ब्रज भूमि पर
हरे कृष्ण। तो जी आपने कहा था कि भगवान के वाहन गरुड़ बलराम जी ही हैं। गरुड़ तो गरुड़ तो जीव तत्व है, बलराम जी विष्णु तत्व है, तो कैसे बने हो गरुड़?
बढ़िया प्रश्न है। वो जब सेवा के रूप में आते हैं तो उस सेवा के रूप में विलास प्रकट जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी स्वरूप से खाली करेंगे, जीव तत्व से भी कर सकते हैं, जीव तत्व से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीव तत्व होकर नहीं करेंगे, ऐसा भी वर्णन है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। और वाहन के रूप में गरुण जी को ही कहा गया है और यह वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। मैं अपना विचार नहीं दिया, यह मेरा विचार नहीं था, यह चैतन्य भागवत, इसलिए मैं पढ़कर बोला कि वाहन के रूप में वही है, भगवान भी हैं, वाहन भी हैं, सेवक भी हैं, सब कुछ है। जैसे गाय चरा रहे हैं वही बछड़े चरा रहे हैं, बछड़े को हांक भी रहे हैं, छीके भी, लोटा भी, सब कुछ है। आप सुने ना, जावत जस्ती बिछाने दल से, तो इस रूप में उनको मान लीजिए, अन्यथा नहीं।
वृंदावन दास ठाकुर का जो श्लोक है ना, उसमें 10 बातें बताई गई हैं।
हाँ, 10 बात,
उसमें से एक वाहन बताया गया है।
हाँ जी,
नहीं गरुड़ नहीं बताया गया, इसलिए मैं पूछ रहा था। वाहन बताया गया है,
हाँ,
गरुड़ नहीं बताया गया है। तो बलराम जी गरुड़ आते हैं, इसका कोई रेफरेंस है क्या?
इस पर कोई मतलब आचार्यों का उस तरह का नहीं है, लेकिन वाहन शब्द से अर्थ यही लक्षित हो रहा है। वाहन शब्द से, वाहन शब्द है, भगवान के अतिरिक्त दूसरा वाहन तो सर्वविदित नहीं है लोक में कि है, यदि हो तो बतला सकते हैं, अपना घर की, अपने घर की बात है। लेकिन वाहन शब्द से वहां गरुण जी को ही अधिभूत अधिग्रहण किया गया है।
वो तो ऐसे तो हनुमान भी वाहन बने उन राम जी के हैं।
देखिए हनुमान जी बने हैं,
अनंत शेष भी वाहन बनते हैं।
हाँ, वो भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो किसी रूप में आ सकते हैं। जैसे हनुमान जी वाहन के रूप में, स्वयं कृष्ण भी नंदी के रूप में शिव जी के वाहन वही है। भागवत पत्रिका जो स्कान से निकलती है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान ही नंदी के रूप में शिव जी के वाहन वही हैं। तो क्या वो जीव तत्व हो गए? बैल होने से वो जीव तत्व मान लिया जाएगा उनको? नहीं। तो उसी तरह गरुण अगर वाहन के रूप में सेवा कर रहे हैं तो इस संसार का नियम वहां लागू नहीं होगा। वो नित्य पार्षद हैं, उनके स्वरूप भूत हैं, वो उन्हीं के लिए।
तो गरुड़ जीव तत्व नहीं है?
नहीं, हम वाहन कह रहे हैं, जीव तत्व की बात नहीं किए हैं, जीव तत्व की नहीं कि हम, वो इस रूप में आके सेवा कर सकते हैं, जीव तत्व की तो हमने चर्चा ही नहीं की।
नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न है, गरुड़ जीव तत्व है क्या विष्णु तत्व है?
कौन, गरुड़? देखिए जहाँ गरुड़ की बात है, हम तत्व की बात तो यहाँ निरूपण केवल बलराम तत्व की बात किए, वो वाहन के रूप में, सैया के रूप में, आसन के रूप में जितने भी किए वो सब भगवत स्वरूपों की बात कह रहे हैं। तो भगवान ही भगवान पर सोते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चराते हैं, खिलाते हैं, तो यहाँ पंच भौतिक नियम लागू नहीं होगा। और जब पंच भौतिक रूप नहीं लागू होगा तो फिर वो दिव्य है, और दिव्य है तो भगवत स्वरूप है। ठीक है,
ठीक है,
हरे कृष्ण।
जैसे कि ब्रह्मा जी हरिदास के रूप में है और गरुड़ पक्षी के रूप में है, दूध में समाये हुआ दही भी है और उसी में मक्खन भी है, और वो सारोपरि में, सर्वोपरि में घी रूप में बदल जाता है, किंतु जब दूध को हम देखते हैं वो सब दृश्य नहीं होते। और ये जीव तत्व हुए भी विष्णु तत्व है, क्योंकि जब भगवान किसी को स्पर्श कर लेते हैं, भगवान जहां प्राकट्य हो जाते हैं, जड़ भी चेतना बन जाता है। भगवान जब प्रकट हुए बंदी गृह में, बंदी की जो जितने लोग थे टूट गए, तो जीव तत्व भी विष्णु तत्व में परिवर्तित हो जाता है जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं, और भगवान जब आरूढ़ हो जाते हैं वो जीव तत्व होते हुए भी जीव तत्व नहीं रहता। ऐसे देखा जाए श्रील प्रभुपाद भी भगवान के नित्य पार्षद है, तभी तो आए, किंतु साधारण लोग समझते हैं वो एक मानव, मानवीय लीला कर रहे, एक मानव है, परंतु मानव होते हुए भी ये नित्य पार्षद है।
अच्छा,
जीव तत्व विष्णु तत्व कभी नहीं बन सकता, ये तो बहुत बार पढ़े हैं हम। आपने बताया जीव तत्व भगवान ने छू लिया तो विष्णु तत्व बन सकता है, जीव तत्व तो विष्णु तत्व कभी नहीं बन सकता।
विष्णु तत्व की जहां बात करें वो ठीक है, विष्णु स्वरूप तो है ही जीव, लेकिन वो विष्णु इस रूप में नहीं बन सकता है कि वह सृष्टि नहीं कर सकता है, संहार नहीं कर सकता है, पालन नहीं कर सकता है, इस रूप में जीव नहीं ब्रह्म हो सकता है, लेकिन भगवत स्वरूप हो सकता है, वो ठीक उत्तर दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, शास्त्र सम्मत है, ऐसा है, श्रीपाद जीव गोस्वामी भी यही बात लिखते हैं, इसलिए सब दिव्य हैं।
दधी भंड की जो रस्सी था उसमें सब घंटियां बांध दी, और जब भगवान दधी चोरी करने के लिए जा रहे थे उन्होंने देखा जो घंटियां बंधी हुई है, तो भगवान ने कहा ये देखो बजना नहीं, तुम बजेगा नहीं, पर घंटियां चुप रही। पर भगवान ने जब मक्खन को लेके अपने जीभ में लगा दिया सब घंटियां बज उठी, तो भगवान कहे तो भगवान पकड़े गए उस दिन, तो भगवान बोलते हैं जे तुमने क्यों बजा, बोले ठाकुर जी आपने तो कहा है जब मैं भोग दे रहा हूं तो घंटे बजाना पड़ेगा।
हाँ लीला में है,
वो बजे कैसे ना, जहां पर भगवान आ जाए जीव भी, जैसे प्रभु जी ने बताया बड़ा सुंदर, वो संहार पालन और सृष्टि नहीं कर सकता, किंतु वो भगवान के बाहक है। जीव तत्व हुआ तो क्या हुआ, जीव तत्व में नहीं है क्योंकि भगवान बैठे हुए, भगवान को कैरी करता है, तो इसलिए वो विष्णु स्वरूप है।
हाँ।
जगन्नाथ जी में जगन्नाथ मंदिर की लीला अगर सुनाओ गरुड़ स्तुति कर रहा है, पर वो भक्तों का भक्त है, और जगन्नाथ जी स्वयं गरुड़ है, गरुड़ के रूप में भगवान है, गरुड़ का स्नान पहले होता है, भगवान के स्नान बाद में होता है जगन्नाथ जी में, सो इसलिए इसको मानना पड़ेगा भगवान जिस स्थान में बैठे हैं वो दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्थिति में है।
बोले
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो दुर्योधन जो था सब दुर्गुणों के खान था, और जब महाभारत के अंत में जब भीम उसकी पिटाई कर रहा था, उसकी जांघा तोड़ी और उसके सर पे लात मारी, उस समय बलराम जी पहुंचे, तो बलराम जी को तो खुश होना चाहिए था, वो अच्छा काम किया, लेकिन बलराम जी गुस्सा हो गए उस समय, क्यों?
ये तो कथा में नहीं आई थी, ये तो गणेश जी के मूवी जैसा ही हो गया। लेकिन वहां बतलाया गया है, एक बार इस पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर बलराम जी बहुत दूर रहे, वो सबसे सबको मिलाने वाला काम किए, युद्ध वाला काम तो कभी नहीं किए, लेकिन वहां क्यों क्रोध किए? तो क्रोध इसलिए किए कि उनको शिष्य वात्सल्यता अधिक आ गई थी, एक कारण था। दूसरा कारण यह था उनको क्रोध होने का कि शिष्य तो दोनों थे, भीम भी उन्हीं का शिष्य था और दुर्योधन भी उन्हीं का शिष्य था, तो फिर वात्सल्यता तो दोनों पर होनी चाहिए, तो उन्हीं पर क्यों आई, इन पर क्यों नहीं आई? तो इन पर इसलिए नहीं आई कि युद्ध काला में जो
दुर्योधन को या भीमसेन को उन्होंने सुनाई सिखाई थी तो यह सजेशन दिया था कि गदा से जब प्रहार करना तो जांघ से नीचे नहीं करना, कमर से नीचे नहीं करना है। तो तुमने गदा से प्रहार किया, वो कमर से नीचे जांघ पर क्यों किया? इसलिए हमारे आज्ञा के उल्लंघन किए हो, भगवत आज्ञा के उल्लंघन किए हो, इसलिए तुम दंड के पात्र हो, इसलिए क्रोध किया। यही तो कारण था कि शुद्ध गोस्वामी का उन्होंने वध कर दिया। जो आचार्य हैं भगवत प्रवचन कर रहे हैं लेकिन उनको अभी सिर काट दिए, क्यों? क्योंकि मर्यादा का वहां हनन हो रहा था, भगवत आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था। शास्त्र कहता है कि भगवान के आने पर और गुरु के आने पर आसन से उठकर खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए, और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सिर काट दिया। तो क्या भगवान को बहुत लालसा थी प्रणाम स्वीकार करने की? नहीं, मर्यादा भंग हो जाती, और भगवान मर्यादा की स्थापना के लिए आते हैं, इसलिए भगवान ने स्थिति को ठीक रखने के लिए सिर काट दिया। और वहां शिष्य पर क्रोध किया कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, न्याय संगत बात नहीं है, तुमने गलत किया है, दंड के पात्र हो। ठीक है, मुझे जाना भी है, तुरंत निकलना भी है।
हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रसंग। जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया तो भगवान जब कहते हैं कि मेरे साथ जो भी आते हैं भगवान के कार्यक्रम में, जो भी शामिल होते हैं, जैसे गरुड़ जी हैं तो भगवान के वाहक हैं, जो अस्त्र शस्त्र भगवान लेके आते हैं तो कहते हैं कि ये सब में कुछ फर्क नहीं है।
हाँ, सही बात।
बांसुरी में भी फर्क नहीं है, मेरे अस्त्र शस्त्र में फर्क नहीं है, और मुझ में कोई फर्क नहीं है।
हाँ जी।
तो भगवान से संबंधित जो भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से जो आपने कहा ये सत्य है कि चाहे वो जीव तत्व हो चाहे जो भी हो, लेकिन जो भगवान के संबंध में आया है तो उसमें और भगवान में कुछ फर्क नहीं है।
हकीकत है।
ठीक है,
ठीक है, अच्छा हुआ हमारे ही उनके प्रश्न को हमारे तरफ से आप लोगों ने उत्तर दिया। यद्यपि मैं संक्षिप्त में दिया था, प्रभु जी ने और स्पष्ट करके दिया, बड़ा अच्छा, उसी का आप अनुमोदन कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समय कम है, मुझे निकलना है। आप वैष्णवों के चरणों में हमारा प्रणाम। समवेत रूप से सबको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, विशेषकर श्री ब्रजहरि प्रभु को और अन्य जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, और श्री राधिका कन्हाई प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ आनंद मिला उन्हीं का श्रेय है, इसलिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद।